भाई साहब, पहला सवाल नॉलेज से मुतालिक है। ये इन्फॉर्मेशन एज है। हम देखते हैं कि जो जदीद उलूम है वो अब हमारी कंप्यूटर की एक क्लिक के ऊपर मौजूद हैं और उलूम तक अप्रोच करना बहुत इजी हो गया है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इल्म बहसियत मजमूई उठता जा रहा है, ये बल्कि बोला भी जाता है। ये क्यों ऐसा है?
ये लोग कहते हैं, मैं कभी समझ नहीं सका कहाँ उठ के चला गया है। यानी इल्म मौजूद है, कभी नहीं उठेगा। लोगों के अंदर सीरत और किरदार में भी खामियां मौजूद हैं, लेकिन बड़े बड़े साहिब सीरत लोग इस दौर में भी पैदा होते हैं। कुरान मजीद अस्साबिकुन अल्अव्वलून के बारे में कहता है कि वो पहलों में से भी एक गिरोह होंगे और बाद में आने वालों में से होंगे, कम हो जाएंगे लेकिन होंगे। तो इल्म मौजूद है, ऐसा नहीं है कि इल्म उठ गया है। अलबत्ता यह है कि जब हम किसी दौर में जी रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा हसास हो जाते हैं। बाज़ औक़ात माजी बड़ी खूबसूरत याद की सूरत में हमारे दिलो दिमाग का इहाता कर लेता है। बाज़ औक़ात मुस्तकबिल की तमन्नाएं जब पूरी नहीं होती तो हम अपने हाल से मायूस हो जाते हैं। तो इस वजह से इस तरह की बातें भी करते हैं। क़यामत के करीब इसमें कोई शुबा नहीं कि बाद रवायतों में यह बात आई है कि इल्म अपनी हकीकत खो देगा, और ये चीज़ उस फितने की सूरत में होगी जिसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म करने का फैसला कर देंगे। लेकिन इस ज़माने में साइंसी उलूम पैदा हुए, दुनिया भर में तरक्की के मुंतहा तक पहुँचे, उनके ज़रिए से बेशुमार चीज़ें ईजाद हुई, आपकी मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। यानी आप आज से 35-40 साल पहले की ज़िंदगी का तसव्वुर कीजिए और आज की ज़िंदगी का तसव्वुर कीजिए। इमारतों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, रहन सहन में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, खरीदो फरोख्त में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इस वक्त आप किन किन चीज़ों तक रसाई रखते हैं। आप ये देखिए कि एक वक्त वो था कि एक इलाके के अहले इलम को दूसरे इलाके के इलम से वाकफियत नहीं होती थी, उन्हें मालूम नहीं होता था कि वहाँ कौन लोग हैं। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो महीनों का सफ़र करना पड़ जाता था। अब आप अपने कमरे में बैठे होते हैं, अपने घर में बैठे होते हैं, दुनिया भर के उलूम आपके पास पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, यानी इल्म का शू है बड़े पैमाने पर। अगर आप दीन के इल्म की बात करें तो आज के दीन के आलम की रसाई जिन माखस तक है, आप असलाफ में उसका तसव्वुर नहीं कर सकते।
तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका?
जब कोई शायर किसी चीज को बयान करता है, देखिए शेर का हुस्न यह है कि उसमें चीज को मुबालगे के उसलूब में बयान किया जाता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक हकीकत आपके दिल में तराजू नहीं होती। इसके ऊपर अलग से बात की जा सकती है कि ये मुबालगा कितना सच्चाई पर मबनी होना चाहिए और इसमें किस्म का क्या मुकाम है, ये एक अलग बहस है और इनमें बलागत की बहस है। सच्चाई को एक ऐसे जाविये से आप बाज़ूकात बयान करते हैं कि जिसमें बज़ाहिर कोई गलत बात नहीं होती लेकिन वो चीज़ नुमाया होकर आपके सामने आ जाती है। यहाँ शायर ये बयान करना चाहता है कि इंसान अपने बातिन की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, अपनी रूह के मसाइल को नहीं समझ रहा, वो खारिज में बड़ी हद तक मशगूल होकर रह गया है। ये एक अमूमी तबसरा जो कर दिया है। दुनिया अब अरबों की तादाद में है, इसमें कितने लोग हैं कि जो बातिनी में मशगूल हैं, कितने लोग हैं कि जो आज भी तपस्या कर रहे हैं बैठे हुए, कितने हैं जो सूफियाना अशगाल में मसरूफ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अमूमी तबसरे की हैसियत रखती होती हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया उनसे खाली हो गई।
अच्छा जावेद साहब, अभी आपने अपने इस जवाब में एक ये चीज़ कही थी कि हाँ कि कयामत के करीब इस तरह की रिवायात मिलती हैं कि कयामत के करीब हो गए तो इल्म जो है वो अपने रूह के लिहाज से उठा लिया जाएगा, स्पिरिट उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो चरवाहे हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, तो कयामत के करीब का ज़माना तो शुरू हो गया है, तो इस जमाने के लिहाज से वो रिवायात अब सही नहीं है कि इल्म जो है वो खत्म हो जाएगा?
देखिए उसका जरूर होना शुरू हो जाएगा। यानी अब किन मराहल से गुजर कर होना है, ये तो कुर्ब क्यामत की अलामत है। यानी इसके बाद अब क्यामत करीब आ रही है, तो कुर्ब बजाय खुद एक मुद्दत का नाम है। उसमें पहले मरहले में क्या होना है, दूसरे मरहले में क्या होना है, तीसरे मरहले में क्या होना है, ये बयान किया गया ना कि याजूज और माजूज का खुरूज होगा। यानी क्यामत की जो कतई अलामत है वो कुरान में बयान हुई है कि याजूज और माजूज का खुरूज होगा। याजूज और माजूज का खुरूज एक दर्जे में शुरू हो चुका है, लेकिन वो कौन सी नौबत है जिसको कुरान ने बयान किया, मिन कुल्ले हदमी यनसलून, यानी हर घाटी से निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, तो क्यामत उस फितने से बरपा होगी। तो जाहिर बात है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जितनी भी अलामतें या निशानियां बयान की गई हैं वो जहूर पजीर होंगी, लेकिन वो अपने मुंतहा पर पहुंचेंगी जिस वक्त फिर अल्लाह ताला की तरफ से اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ اب سور پھونک دیا جائے.
ایک بات اور وضاحت کر دیجیے گا, آپ نے فرمایا کہ جو جس طرح سے آج ہمارے سامنے جو نالج جس طرح موجود ہے, ظاہر اسلاف کے زمانے میں اس طرح سے نالج اس طرح بکھری بھی نہیں تھی, ایسے موجود نہیں تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, دانشور ان میں تھے, سائنٹسٹ تھے, وہ بیک وقت اپنی اسی لمیٹڈ زندگی میں وہ ماہر فلکیات بھی ہوتے تھے, وہ طبی چیزوں سے بھی واقف ہوتے تھے, وہ سماجی معاملات کو بھی دیکھتے تھے, وہ فلسفی بھی ہوتے تھے. آج اتنا سارا ہونے کے باوجود, علم ہونے کے باوجود, ہم کسی ایک ہی فیلڈ میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں.
یہ کہ اس وقت علوم کا دائرہ انتہائی محدود تھا. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک علم کی آپ امہات جمع کرنا شروع کریں تو ایک لائبریری بن جاتی ہے. اس وقت جو کتابیں ان کے سامنے ہیں, جو افکار ان کے سامنے ہیں, جو مواد ان کے سامنے ہیں, وہ بہت محدود ہے. تو اس میں ایک آدمی کے لیے ممکن ہوتا تھا کہ وہ 10-20 علوم بھی مہارت حاصل کر لیں. جب علوم کا دائرہ بہت پھیل جائے گا, یعنی آج کی طب کا تکامل کر کے دیکھیے نا, آج سے 4 صدی پہلے کی طب کا, القانون میں نے پڑھی ہے, اس کے اندر بھی بڑی وسعت ہے, لیکن اس وسعت کا آج کی وسعت سے آپ کیا تقابل کر سکتے ہیں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آنکھ کا اگر آپ مطالعہ کرنا شروع کریں, جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے, تو اس میں سویرا ہو جائے گا.